कालवर्ती साहूनम्। ये स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख समझाव्यो के पद नमो श्री सद्गुरु भगवन।
समय शक्ति दी गई मुगल
गुण एक एक जाके पर जे अनंत करे पर जे में अनंत नृत्य नाना विस्तरियो है नृत्य में अनंत थट थट में अनंत कला कला में अखंडित अनंत रूप धरियो है रूप में अनंत सत सत्ता में अनंत भाव भाव को लखाव हुआ अनंत रस भरियो है रस के स्वभाव में प्रभाव है अनंत दीप सहज अनंत यो अनंत लगी करियो है सहज अनंत यो अनंत लगी करियो है।
किसी को याद हो गया ये वाला मंगलाचरण? जरूरी नहीं है क्यों? ये तो हमारे ये राजस्थान के आए भाई साहब इनको याद हो गया है। सुनाओ साहब सुनाओ उधर नहीं देखना आओ 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 ये माइक से बोलो। अरे मत दो सुना देंगे मैंने निकाल दिया। अच्छा मैं मैच करूं? हाँ चलो बोलो साहब बोलो।
पहले सुना दिया मैंने बनी जी को।
चलो अभी सबको सुनाने का है।
हेलो हेलो
इसको भी पीएचडी में लगी
बिल्कुल।
गुण एक एक जाके पर जाय अनंत धरे पर जमे अनंत अनंत नृत्य नाना विस्तरियो है नृत्य में अनंत थट थट में अनंत चलो नहीं हो गया
काय जाला
अटक गया था।
इन्होंने मेरे को सुनाया सुबह
मैं तो सही मगर
लेकिन वो जो है एकदम अचानक बोला ना मैंने और दूसरा थोड़ा सा ये माइक पर थोड़ा सा माइक कौन सा सही है। बहुत बढ़िया साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा 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 बहुत बढ़िया। देखिए 47 शक्तियों की चर्चा अपन कर रहे हैं उसमें अपनी 13वीं शक्ति चलेगी आज 13वीं 14वीं 15वीं 16वीं और 17वीं ये के 5 शक्तियों का ग्रुप है जिसमें एक शक्ति का दूसरी शक्ति से मैच नहीं होता है लेकिन ये 5 शक्तियां आचार्य ने भी एक साथ रखी हैं इसलिए अपन ने उनको एक ग्रुप बना करके आपको याद करने के लिए भी इसमें सहूलियत हो इस दृष्टि से ये 5 शक्तियों की चर्चा अपने को करना है। इन 5 शक्तियों के माध्यम से आत्मा के आपको 5 स्वरूप इनमें 3 शक्तियां तो आत्मिका हैं। देखिए ये वाली शक्ति जो है असंकुचित विकासत्व शक्ति क्षेत्र काल अनवच्छिन्न चिद विलासात्मिका असंकुचित विकासत्व शक्ति ये चिद विलासात्मिका है। दूसरी जो अकार्य कारणत्व शक्ति है वो अन्य अक्रियमाण अन्य अकारक एक द्रव्यात्मिका ये एक द्रव्यात्मिका अकार्य कारणत्व शक्ति है। इसके बाद में जो 15वीं और 16वीं है ये भूपा शक्ति है परात्म निमित्तक ये ज्ञानाकार ग्रहण ग्राहण स्वभाव रूपा परिणम्य परिणामकत्व शक्ति सोलहवीं शक्ति भी रूपा शक्ति है, अन्यूनातिरिक्त स्वरूप नियतत्व रूपा रूपा त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, ये दोनों दो रूपा शक्तियां हैं। इसके बाद में जो ये अगली शक्ति है ये भी आत्मिका है, माने कितनी, पांच शक्तियों में तीन तो आत्मिका शक्ति है और दो रूपा शक्ति है। आत्मिका शक्तियां टोटल नौ हैं, लेकिन तीन को यहां पर आ गई, तीन तो आत्मिका शक्तियों को हम स्वरूपा शक्ति भी कह सकते हैं, स्वरूपा। और रूपा शक्ति जो है वो एक ये आत्मा के ऐसे रूप, तो आपको रूप बताए जा रहे हैं यहाँ पर। रूपा शक्तियां तो वैसे पंद्रह हैं, रूपा माने इनका संबंध अवस्थाओं के साथ है, इसलिए इनको रूपा शक्तियों के अंतर्गत लिया गया है। इसमें जो है अब अपन चर्चा करेंगे एक एक शक्ति की। तेरहवीं शक्ति है असंकुचित विकासत्व शक्ति। देखो मुझे मजा तो इस बात का आ रहा है कि आत्मा के हमको कैसे कैसे रूप दिखाई दे रहे हैं। मैंने 47 शक्तियों के माध्यम से तो हम आत्मा के स्वरूप को जानते ही हैं, लेकिन 47 नए भी वो आत्मा के ही धर्मों को बताने वाले हैं। अलिंग ग्रहण की जो 20 बोल हैं वो भी आत्मा का ही तो स्वरूप है ना। अलिंग ग्रहण अरस मरुवम गंधम, ये गाथा ही आत्मा के स्वरूप को बताने वाली है। जान अलिंग ग्रहणम, आत्मा को तुम अलिंग ग्रहण जानो। और अलिंग ग्रहण के तो कितने बोल आचार्य ने निकाले हैं, जहां पर 20 बोल निकाले प्रवचन सार की 172 नंबर की टीका के आधार पर, तो वहीं समय सार में 49 नंबर की गाथा है ये अलिंग ग्रहण की, उसमें एक एक अरस के 6 बोल, अरूप के 6 बोल, अगंध के 6 बोल, उसमें 6-6 बोल का आचार्य को एक वो चला, और उसमें करीब 40 बोल है। 40 बोल बराबर बोल रहे, मैंने 4 तो गुणों के बोल हो गए, रूप रस गंध स्पर्श वाले अरस अरूप के, फिर अलिंग ग्रहण के नहीं, अलिंग ग्रहण नहीं, अशब्द के भी 6 बोल हैं। उसके बाद में एक मिनट, अव्यक्त के 6 बोल अलग हैं और अलिंग ग्रहण के 4 बोल हैं, अनिर्दिष्ट संस्थान के 4 बोल हैं, उसमें अलिंग ग्रहण के बोल नहीं दिए। और यहां पर 172 गाथा में उन बोलों को गौण कर दिया और अलिंग ग्रहण के बोलों को मुख्य किया, तो टोटल यदि बोलों की संख्या करें तो 40 उसके और 20 इसके, 60 बोलों के द्वारा अलिंग ग्रहण को समझाया। तो जो है हम जहां चर्चा कर रहे हैं वहां आत्मा की ही चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आपका पेट भर गया, इतना सारा खाना खिलाया आत्मा का, फिर भी आपका पेट नहीं भरता है। क्यों नहीं भरता है? इसलिए नहीं भरता है कि इसके बाद भी बहुत है ना, इसमें तो कुछ नहीं आया, इसके बाद भी बहुत है, इसलिए आत्मा का जो स्वरूप है, हम तो ये एक सैंपल बतौर चर्चा चल रही है कि आत्मा में एक ऐसी भी शक्ति है, विचार तो करो, मैं आत्मा कैसी चीज हूं कि मेरे में एक ऐसी शक्ति है। देखो ये 13वीं शक्ति कह रही है कि हे आत्मन, तेरे पास में एक असंकुचित विकासत्व शक्ति है। क्या कह रहे हो प्रभु? मेरे पास में असंकुचित विकासत्व शक्ति है, मैंने तो इससे उल्टा सुन रखा है। क्या सुन रखा है वत्स तूने? वत्स बोलते हैं शिष्य को, वत्स तूने क्या सुन रखा है? मैंने ये सुन रखा है प्रभु कि आत्मा में संकोच विस्तार की शक्ति है, और आप कह रहे हो आत्मा में असंकुचित विकासत्व शक्ति है। वत्स घबरा मत, तेरी बात भी कथनचित सत्य है। तेरी बात जो है वो पर्याय दृष्टि से सही है, लेकिन हम जो यहाँ शक्तियों की व्याख्या कर रहे हैं यहाँ पर्याय दृष्टि पर्यायों की बात नहीं है, यहाँ पर शक्तियों की बात चल रही है। आत्मा में जो गुण है वो असंकुचित विकासत्व का गुण है, और ये जो असंकुचित विकासत्व का गुण है ये उस संकोच विस्तार से अलग है, और सुन जिस संकोच विस्तार की तू बात करता है वो संकोच विस्तार भी अकेले संसार अवस्था तक चलता है। जब जीव को सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो जाती है तो ये संकोच विस्तार भी खत्म हो जाता है, फिर एक रूप आत्मा रह जाता है अनंत काल के लिए। और जिस मैं असंकुचित विकासत्व शक्ति की जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो असंकुचित विकासत्व शक्ति तो आत्मा की है, उस संकोच विस्तार में प्रदेशों का संकोच विस्तार है, और इस असंकुचित विकासत्व में आत्मा के वैभव का, आत्मा के अनंत गुणात्मक वैभव का न संकोच है और न विस्तार है, वो तो चिद विलास आत्मिका। कैसी है वो असंकुचित विकासत्व शक्ति? चिद विलास स्वरूप है, चिद विलास आत्मिका। चिद विलास कुछ याद आता है आपको? चिद विलास पंडित दीपचंद जी शाह कासलीवाल जिनका अपन ने वो अभी पद पढ़ा, सवैया पद भी उनका ही है, सवैया टीका भी उनकी है, अनुभव प्रकाश भी उनका है, परमात्मा पुराण भी उनका है। कोई पीएचडी करना चाहता हो तो दीपचंद जी शाह कासलीवाल पर करे। देखो ये दूसरा विषय बहुत बहुत और इतना गहरा, मैंने आपको पहले दिन कहा था ये बात कि पूज्य गुरुदेव श्री को 47 शक्तियों का व्याख्यान करने के लिए विशेष रूप से मसाला ये भाषा आजकल की, मैंने उनको विशेष रूप से ये दीपचंद जी शाह कासलीवाल के ग्रंथों से इनको विशेष मैटर मिला उसमें, उसका वो जो अध्ययन करे। चित विलास में 47 शक्तियों की चर्चा है, परमात्मा पुराण में 47 शक्तियों की चर्चा है, और ग्रंथों में भी है। चित विलास की बात तो आज भी आई थी, कब आई थी बताओ? हैं? हाँ, अनित्य नित्य का निर्णय करता है, ये 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 आज गुरुदेव श्री के व्याख्यान में आया था, अनित्य नित्य का निर्णय करता है, ये दीपचंद जी ने उनने कहा है। और परमात्मा पुराण तो पूरा शक्तियों के ही व्याख्यान से भरा पड़ा है। शक्तियां बताओ, तो यहां पर जो है ये कह रही है ये शक्ति कि तुम आत्मा को देखो, इसकी भाषा देखिए, इस भाषा इसकी इसका संधि विग्रह आप देख लीजिए, क्षेत्र काल अनवच्छिन्न, संधि विग्रह नीचे देखिए, क्षेत्र काल अन अवच्छिन्न अनवच्छिन्न चिद विलासात्मिका असंकुचित विकासत्व शक्ति। ये जो विकास शब्द आएगा इसमें, ये विकास में वो श नहीं है, श कौन सा? शक्कर वाला। ये कौन सा स है? ये सड़क वाला स है। मैंने यहां पर ये इस विकास का और उस विकास का फर्क है। वो विकास तो प्रकाश के जैसा है, अपनी तो प्रकाश शक्ति हो गई बारी, यहां पर अभी विकास और प्रकाश वाली बात नहीं है, यहां तो विकास की बात है, माने स्प्रेड होना और संकुचित होना। आत्मा की देखो ना कैसी, ये अभी तो मैं ये असंकुचित विकास तो अलग चीज है, जो संकोच विस्तार की शक्ति है आत्मा में वो भी है, लेकिन उसको यहां शक्तियों के प्रकरण में नहीं लिया, उसका उसकी थोड़ी चर्चा 24वीं शक्ति में आती है भाई साहब, जो नियत प्रदेशत्व शक्ति है उसमें थोड़ी सी चर्चा आत्मा के संकोच विस्तार की आएगी, जिसकी अपन पर्याय रूप की बात कर रहे हैं। माने ये आत्मा हाथी के शरीर में जाता है तो हाथी जैसा हो जाता है, ये आत्मा मरकर के चींटी के शरीर में जाता है तो वो चींटी जैसा हो जाता है, ये आत्मा मर के निगोद के शरीर में जाता है तो वो निगोद के शरीर जैसा हो जाता है।
बताओ निगोद माने क्या? निगोद माने एक शरीर और अनंत जी।
बोलो साहब क्या व्यवस्था है साहब आपकी? एक एक कमरे में आपने आठ आठ लोगों को ठहरा रखा है। अरे ऐसा ठहराया नहीं है, मैं तो वैसे उदाहरण के लिए बोल रहा हूं पंडित जी, ये तो कम है।
एक एक कमरे में आठ आठ को ठहराया है, कोई बात नहीं है, हमको अभ्यास तो, और ये तो कमरा है, वहां तो शरीर एक मिलता है, एक शरीर, और उसमें अनंत अनंत जीवों को ठूस दिया जाता है, उसका नाम है निगोद। ये जो हम खाते हैं ना आलू प्याज बड़े चाव के साथ में, हमारा तो चलता नहीं है, बहुत से लोगों का आलू के बिना चलता नहीं है, बेटा यहां भी नहीं चल रहा है वहां भी नहीं चलेगा, ऐसा मिलेगा शरीर, एक मरेगा तो अनंत मरेंगे, ऐसा इसी अवस्था हो जाएगी। तो वहां पर ये आत्मा का देखना, ये आत्मा के प्रदेशों का कितना एडजस्टमेंट का पावर है। मैं इसके साथ में आपको 24वीं शक्ति भी पढ़ा दूं तो एक अपना एक काम हो जाएगा भाई साहब। 24वीं शक्ति भी देख लीजिए, देखना 24वीं शक्ति निकालिए, आपके पास में कागज में भी होगा किताब में, देखो बड़ी शक्ति है ये, इसमें अकेले लक्षण लिखने में मेरे को एक पेज लग गया, उसके बाद में संधि विग्रह में एक पेज लगा है, उसके बाद में अर्थ करने में दो पेज लगे हैं। नियत प्रदेश तत्व शक्ति, देखना ये 24वीं नियत प्रदेश तत्व शक्ति है, बहुत बढ़िया शक्ति है ये भी। ये शक्ति पूरी हमारी कहानी कह रही है भाई साहब, इस जीव की अनादि काल से जो कहानी है, दास भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहूं कही मुनि यथा, वो जो आत्मा की कहानी है वो ये नियत प्रदेशत्व शक्ति कह रही है। क्या कह रही है देखो, ये नियत प्रदेशत्व शक्ति को मैं पढ़ता हूं आपको, आप भी बोल सकते हैं मेरे साथ में, आ संसार सं, इसका संधि विग्रह देखो, आपको तो थोड़ा पढ़ने में सरल आएगा, आ संसार संहरण विस्तरण, फिर से संसहरण विस्तरण लक्षित, किंचित ऊन चरम शरीर परिमाण अवस्थित, लोकाकाश सम्मित आत्म अवयवत्व लक्षणा नियत प्रदेशत्व शक्ति ही। देखो क्या बोल रही कहानी, ये कहानी कब से शुरू होती है, कब से शुरू होती है, आसंसार, आसंसार माने जब से ये संसार है तब से, आसंसार जब से ये संसार है माने अनंत काल पहले से, अनंत काल जब से भूतकाल है तब से। बोले साहब भूतकाल का तो कोई प्रारंभ नहीं हुआ तो इसका भी कभी प्रारंभ नहीं हुआ, आ संसार जब से ये संसार है तब से ये जीव कैसा हो रहा है, कैसा हो रहा है, संहरण विस्तरण लक्षित, ये कभी संहरण करता है कभी विस्तरण करता है, बस ये संहरण विस्तरण से लक्षित हो रहा है। संसारी जीव का क्या लक्षण बताओ, संसारी जीव का क्या लक्षण? तो अपन बोलते हैं वो त्रस स्थावरा, संसारी न त्रस स्थावरा, संसारी त्रस स्थावर होते हैं, ये लक्षण नहीं है, ये तो उसके भेद है, संगी होते हैं असंगी होते हैं, संगी न संगी होते हैं असंगी होते हैं, ये भी भेद है उसके, ये लक्षण थोड़ी, लक्षण बताओ संसारी जीव का। तो यहां आचार्य अमृत चंद्र देव उसका लक्षण बता रहे हैं कि संसारी जीव का लक्षण क्या, तो संवरण विस्तरण जो करता है उसका नाम संसारी। कब तक होता है बताओ ये संवरण विस्तरण कब तक होता है? 13वें गुणस्थान के अंत तक चलता है, और वो तो स्पेशल कैटेगरी का होता है संवरण विस्तरण। कौन सा स्पेशल क्वालिटी का? जब केवली समुद्घात होता है, केवली भगवान जब केवली समुद्घात करते हैं तो वो केवली समुद्घात के 8 समय हैं। उसके भेद हैं क्या है पंडित जी? दंड, कपाट और पहले प्रतर के घर में ना, दंड, कपाट, प्रतर, लोकपूरण, ये चार स्टेप। जैसे चार स्टेप में गया वैसे चार स्टेप में लौट के आता है, फिर लोकपूरण के बाद में फिर प्रतर, फिर कपाट, फिर दंड और फिर अपने मूल शरीर में आ जाता है। माने जैसे हम अपना शरीर, जैसे कोई केवली भगवान खड़गासन मुद्रा में ऐसे ध्यान कर रहे हो, अब ये जो ध्यान कर रहे हैं ना, तो एक समय में उनका ये जो शरीर, ये जो आत्मा है वो पूरा लंबा हो जाएगा, पूरे 3 लोक के बराबर। नीचे से अधोलोक को टच करेगा, ऊपर से ऊर्ध्वलोक को टच करेगा। ये तो हुआ दंड, फिर कपाट, फिर ऐसा फैलता है कपाट, जैसे दरवाजा खुलते हैं ना ऐसा, फिर आत्मा के प्रदेश फैलते हैं, फिर ऐसे फैल करके ये पूरे त्रसनाड़ी के बराबर हो जाती है। त्रसनाड़ी के बाहर नहीं जाती, त्रसनाड़ी के बराबर हो जाती। और उसके बाद में होता है प्रतर, प्रतर में माने फिर जो और जो दूसरे स्थान है ना उसमें नहीं, प्रतर में वो मोटाई है ना, मोटाई पहले तो लंबाई, फिर चौड़ाई, फिर मोटाई, 7 राजू प्रमाण, 7 राजू, 7 राजू हो जाएगी, लोक पूरण है ना, इसमें 7 राजू हो जाएगी। उसके बाद में जो बाकी का बचा स्थान, वो जो बाकी के स्थान में फिलअप होता है उसको बोलते हैं लोक पूरण। अब ये लोक पूरण हो गया तो ये आत्मा के प्रदेश पूरे लोक के बराबर, पूरे लोक के बराबर माने त्रसनाड़ी के बाहर जाता है। बोले साहब कैसे त्रसनाड़ी के बाहर चला जाता है ये? सुनो तो, त्रसनाड़ी के बाहर कैसे जा रहा है ये? अभी जो है देरवे गुण स्थान वाले हमारे जो भगवान है, इस त्रस है के स्थावर है, त्रस है, तो त्रस किसे कहते हैं जो त्रसनाड़ी के बाहर ना जाए? बोले साहब ये जो है ना, ये भगवान है, इनके साथ में बहुत सारे अपवाद जुड़े हुए हैं, इसलिए इनको ये आप रेस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते। और आपको मालूम है ये क्यों होता है? ये लोक पूरण समुद्घात होने का भी रीजन है। क्यों होता है? है जी, ये होता है आयु कर्म की स्थिति कम हो और वेदनी आयु नाम गोत्र की कर्मों की स्थिति ज्यादा हो, तो उनका बैलेंस बनाने के लिए, बताओ, ये फैला देते हैं पूरे पूरे आत्मा के प्रदेश फैलेंगे तो उसके कर्म के प्रदेश भी फैलेंगे, पूरे लोक पूरण होंगे उसके भी, आत्मा जहां जहां आत्मा जाएगा वहां वहां वो भी जाएंगे। और वो फैल करके फिर थोड़ा सा यहाँ आयु कर्म का कम है तो उसमें उनकी स्थितियां भी उसके हिसाब से हो जाती है, इसका कुछ ज्यादा हो या कम हो जो भी होता है, आयु कर्म तो कम ज्यादा नहीं होता, आयु कर्म कम ज्यादा नहीं होता, आयु कर्म के हिसाब से वो बाकी के दूसरे कर्म उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाते हैं। और जब वो बराबर एडजस्टमेंट हो गया तो फिर वो एक समय में सारा एडजस्टमेंट हो जाता है, लोक पूरण होता है तब, लोक पूरण के पहले नहीं होता। क्यों? इसलिए नहीं होता कि यदि पहले हो जाए तो फिर लोक पूरण करने की क्या जरूरत है, इसलिए पूरा लोक पूरण होता है। और 4 समय में जैसे गया था लोक पूरण हुआ, वैसे 4 समय में फिर ये अपने मूल शरीर में आ जाते हैं, ऐसा ये केवली समुद्घात होता है।
लोक पूरण के 2
है जी?
लोक पूरण के
2 नहीं है, एक ही है, वो जो है अपन बैठ के बात करेंगे, लेकिन 2 समय नहीं, एक ही समय है, वो है, वो मूल शरीर में आना है ना आखिरी में, तो उस वो मूल शरीर में दंड के बाद में मूल शरीर में आता है, उसमें एक समय लगता है, लोक पूरण का एक ही समय है। चलिए, तो ये जो है यहां पर ये जो संसारी जीव है, और ये लोक पूरण समुद्घात क्यों करते हैं? बोले ये भी संसारी है। कौन? अरहंत परमात्मा केवली भगवान क्या है? संसारी। कब तक संसारी? अभी तो और रहेंगे चौदहवें गुण स्थान में भी संसार, जब सिद्ध बनेंगे तब इनके संसार का अभाव हो जाएगा। इसलिए मालूम है आपको, औदयिक भावों में एक असिद्धत्व नाम का औदयिक भाव माना है। कौन सा औदयिक भाव? असिद्धत्व नाम का। वो कब तक चलता है? जब तक ये जीव सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उसको असिद्धत्व नाम का औदयिक भाव रहता रहता है। कर्म तो जो कर्म सापेक्ष नहीं है, वो कर्म तो आपका मोहिनी कर्म निकल गया, बाकी जाति रह गए, फिर वो घातिया निकल गए, फिर चारी रह गए, फिर ये निकल गए, फिर वही रह गए, बहुत ऐसे उसमें तो कर्मों में तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन ये जो असिद्धत्व नाम का औदयिक भाव है, ये असिद्धत्व नाम का औदयिक भाव यदि एक कर्म भी बाकी है आत्मा के अभाव होने से, तो उस एक कर्म के सहारे टिका रहेगा असिद्धत्व। एक कर्म भी बाकी रहेगा तो इसका असिद्धत्व टिका रहेगा। इसलिए ये असिद्धत्व नाम का औदयिक भाव है। क्या बताना है अपने को यहां पर? ये नियत प्रदेशत्व शक्ति में, नियत प्रदेशत्व शक्ति किसकी है? ये क्या है नियत प्रदेशत्व शक्ति? क्या बता रही है? उल्टा चलो आप इसकी इसकी परिभाषा से, उल्टा उल्टा में क्या है नियत प्रदेशत्व शक्ति? जो है वो ये बता रही है आत्मा के अवयवों के बारे में बता रही है। किसके बारे में बता रही है? कि ये आत्मा के अवयवों के बारे। आत्मा के अवयव क्या है? आत्मा के हाथ पैर, अवयव तो इसी को कहते हैं ना। क्या है आत्मा के अवयव? ये आत्मा के प्रदेश, ये आत्मा के अवयव हैं। कितने हैं? कितने हैं आत्मा के अवयव? ये असंख्य प्रदेश, ये आत्मा के अवयव हैं। असंख्य तो समझ में आ गया, लेकिन असंख्य के भी तो बहुत भेद हैं। तो ये जो असंख्य है, ये कौन सा असंख्य है? देखो ये परिभाषा कह रही है, ये शक्ति कह रही है, लोकाकाश सम्मित। क्या कह रही है? कि लोकाकाश सम्मित, लोकाकाश के बराबर असंख्य प्रदेश है आत्मा की। कैसे सिद्ध हुआ? अरे अभी तो सिद्ध किया ना, लोग पूर्ण समुद्र हाथ से उस समय, ये अभी तो संकोच विस्तार के कारण तो आप आत्मा के एक एक प्रदेश को बराबर अच्छे से देख नहीं सकते, विजुअलाइज नहीं कर सकते। लेकिन जब लोकाकाश के बराबर होते हैं तो लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर आत्मा का एक एक प्रदेश, जैसे वो कालाणु खचित है ना, ऐसे एक एक आकाश के लोकाकाश के प्रदेश पर आत्मा का एक एक प्रदेश ऐसा बिल्कुल फिट बैठता है, साइज बाय साइज। ऐसा ये आत्मा की बात है। तो आत्मा अवयवत्व लक्षणा, कितने हैं आत्मा के अवयव? असंख्य हैं। कौन सा असंख्य है? लोकाकाश प्रमाण, लोकाकाश सम्मित, सम्मित माने समान, लोकाकाश के बराबर। अच्छा, तो ये संसार अवस्था में कैसे हैं? बोले संसार अवस्था में तो ये आत्मा के प्रदेश संवरण विस्तरण लक्षित हैं, माने संकोच विस्तार करते हैं आत्मा के प्रदेश। लेकिन उस समय भी आत्मा के प्रदेश कितने होते हैं? कितने होते हैं? कौन सा असंख्यात? वही लोक पूर्ण असंख्यात। अरे ये तो चींटी के शरीर में है आत्मा, अब ये चींटी के शरीर में लोकाकाश प्रमाण आत्मा के प्रदेश कैसे हैं? आत्मा के प्रदेशों की संख्या उतनी ही, तो फिर ये कैसे हो गए ये चींटी के बराबर? बोले ये हो गए हैं उसमें जो संकोच विस्तार का पावर है उससे हो गए। संकोच विस्तार की शक्ति ऐसी है, संकोच विस्तार का जो ये गुण है, जो ये एक क्वालिटी है, संकोच विस्तार की क्वालिटी छह द्रव्यों में किसी और के पास नहीं है। ये प्योर आत्मा की शक्ति है। पुद्गल में संकोच विस्तार नहीं होता, लेकिन मेरे को संकोच विस्तार समझाना होगा तो मैं पुद्गल का ही उदाहरण दूंगा। क्या वो उसकी बहुत सारी कहानी है, बहुत सारी कहानी है। नहीं नहीं, वो ओवरलैपिंग नहीं होता, मैं ऐसा मानता हूं, इसलिए मैं उस पर अभी आपसे बात नहीं कर सकता। अपन कमरे में बैठेंगे, अकेले बात करेंगे। क्योंकि बाद में मालूम नहीं क्या होगा। ओवरलैपिंग नहीं होती मेरी दृष्टि से। चलो कोई बात नहीं, प्रश्न किस बात का है कि आत्मा के प्रदेश जो है वो असंख्यात है, और वो चीटी के शरीर में इतनी सी चीटी और लोकाकाश कितना बड़ा, माने उसका पार नहीं है ये लोकाकाश का, इतना बड़ा है असंख्यात प्रदेशी, लेकिन इतना बड़ा है। ये जो राजू कहते हैं ना साहब, राजू 14 राजू प्रमाण तो लोकाकाश है, एक राजू इतना बड़ा है, एक राजू की चौड़ाई प्रमाण त्रसनाड़ी है। ये मध्य लोक कितना बड़ा है हमारा बताओ, एक राजू प्रमाण। ये अभी जम्बू द्वीप नहीं पूछ रहा, पूरा मध्य लोक, इसमें कितने द्वीप समुद्र हैं? असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। ऐसा शास्त्र में उदाहरण मिलता है कि देवता भी, ये जो एक राजू की जो दूरी है इसको एक समय में पार नहीं कर पाता है, देवता को भी इसमें ही आल्सो टेक्स टाइम, उसको भी टाइम लगता है इसको पार करने में।
असंख्यात समय
माने अंतर्मूर्त का समय लगता है उसको भी, देवता भी इसको, देवता की क्या स्पीड है आप सोचो, लेकिन उस स्पीड से भी वो गमन करे देवता तो वो नहीं कर सकता, इतनी बड़ी है, डबल होते जा रहे हैं। यहां पर जम्बू द्वीप 1,00,000 राजू प्रमाण का, तो लवण समुद्र जो है वो 2,00,000 राजू प्रमाण का, 2,00,000 राजू प्रमाण का माने 2,00,000 योजन का, 1,00,000 योजन, वो 2,00,000 योजन का, 2,00,000 योजन का नहीं है, 2,00,000 योजन की चौड़ाई है चूड़ी के आकार में, उसके बाद में अगला 4,00,000, उसके बाद में अगला समुद्र 8,00,000, उसके बाद में अगला द्वीप 16,00,000, उसके बाद में अगला समुद्र, चले जाओ, असंख्यात द्वीप समुद्रों के बाद में एक स्वयंभू रमण द्वीप आता है, और उसके बाद में स्वयंभू रमण समुद्र आता है, अंतिम समुद्र हमारा जो है वो स्वयंभू रमण समुद्र है। इतनी बड़ी तो लंबाई है इसकी, ये तो एक राजू का गणित है, ऐसा 14 राजू प्रमाण, ये पूरा लोक है, माने बहुत बड़ा है लोक, लेकिन इसको आपको बहुत बड़ा लग रहा है। हमारे केवली भगवान 1 मिनट में लोक पूरण हो गए, 1 मिनट में माने 8 समय लिए कुल आने जाने में, 4 समय में वो पूरे लोक पूरण हो गए, और ये आत्मा जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में जाए, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाए, कोई हाथी के जैसा शरीर वाला हो यहां पर और जाकर के वो चींटी में जाए, तो ज्यादा से ज्यादा उसको कितने समय लगेंगे? 4 समय, ज्यादा से ज्यादा 4 समय लगेंगे, यदि वो मोड़े वाली 3 मोड़े वाली गति होगी तो। बहुत बड़ा हिसाब है, मैं तो आपको ये समझा रहा हूं कि ये जो है ना आत्मा संकोच विस्तार करता रहता है, कब तक करता रहता है? असंसार, जब तक ये संसार है तब तक करता रहता है। अच्छा भैया उसके बाद क्या होता है? देखो पूछो शक्ति से, किंचित ऊन ऊन माने न्यून, ऊन माने न्यून, किंचित ऊन किंचित न्यून चरम शरीर परिमाण अवस्थित, फिर अब वो संकोच विस्तार का झंझट खत्म, अब अवस्थित हो गया आत्मा, सिद्ध हो गए भगवान तो अवस्थित हो गए। कैसे अवस्थित हो गए, कौन से आकार में अवस्थित हो गए? बोले चरम शरीर परिमाण में अवस्थित हो गए, चरम शरीर के बराबर अवस्थित हो गए। चरम शरीर के बराबर अवस्थित हो गए कि कुछ छोटा बड़ा? हाँ वो किंचित न्यून, वो समझ लेना किंचित न्यून, ये है आत्मा का नियत प्रदेशत्व। अब इसमें नियत प्रदेशत्व क्या है? आप तो बोले संकोच विस्तार होता है, इसमें नियत प्रदेशत्व कहां है? अंतिम नहीं, नियत प्रदेशत्व माने वो जो आत्मा के अवयव हैं वो लोकाकाश सम्मित हैं, वो लोकाकाश आत्मा के प्रदेशों की जो संख्या है उसका नाम है नियत प्रदेशत्व। उसमें निगोद में चला जाए आत्मा, उसके लोकाकाश प्रमाण जो प्रदेश है उसमें एक प्रदेश भी उसका कम नहीं होता। सिद्ध बने चाहे निगोद में जाए, उसके आत्मा के प्रदेशों की संख्या नियत है। इसका नाम है ये नियत प्रदेशत्व शक्ति। अब जो दूसरी शक्ति है इस नियत प्रदेशत्व के सामने, इसमें तो संकोच विस्तार बताया गया आत्मा का संसार अवस्था में। दूसरी जो शक्ति है वो है तेरहवीं, ये तो चौबीसवीं है, वो अपनी तेरहवीं शक्ति है। वो तेरहवीं शक्ति कह रही है असंकुचित विकासत्व शक्ति। वो शक्ति जो है ये संकोच विस्तार के बारे में नहीं है, वो शक्ति ये प्रदेशों के बारे में नहीं है, वो शक्ति किसके बारे में है? कैसे स्वरूप वाली है बताओ, वो शक्ति कैसी आत्मिका है? चिद विलास आत्मिका, आत्मा का ये चैतन्य का विलास है। विलास मीन्स व्हाट? विलास क्या है? विलास क्या है? चिद विलास में देखो कहां है, क्या है चिद विलास में? विलास माने ये आत्मा के जो गुण हैं, वो आत्मा उसमें विलास करता है। ये आत्मा के जितने भी गुण हैं, अनंत 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 अनंत, आज तो गुरुदेव ने 8-10 बताए थे कितने अनंत बोल रहे थे। ये आपने बहुत अच्छा काम किया, कहा है चेतन भाई कि जो बोला गुरुदेव ने, आपने गुरुदेव ने 8 बार बोला तो हमने 8 बार अनंत लिखा। अब नहीं तो हम बोलते यार 8 बार की क्या जरूरत है, हम अपना संपादन की दिमाग लगाते 8 बार की क्या जरूरत है पंडित जी, 1-2 बार कर दो ना, बहुत है ना, टाइम भी वेस्ट हो रहा है, स्याही भी ज्यादा खर्च हो रही है, फिर कागज भी खर्च होगा, ये हमारा संपादन का दिमाग है। लेकिन हमको साहब इससे कुछ मतलब नहीं है, हमने तो क्या फिक्स किया है, गुरुदेव जैसा करेंगे हम तो बिल्कुल वैसा। गुरुदेव ने 8 बार बोला तो हम 8 बार लिखेंगे। बोले साहब कल तो आप 5 बार की कह रहे थे, आज 8 कैसे हो गए? वो आत्मा के गुण है कितने? 5 बार वाला अनंत। लेकिन वो आत्मा की पर्याय, गुणों की पर्याय कितनी, उससे जाएंगी क्या नहीं ज्यादा? और फिर 3 काल के समय, फिर 3 काल के समयों की पर्याय कितनी होंगी, वो उससे मन ऐसा, और वो अविभागी प्रतिच्छेद कितने होंगे, वो उससे भी अनंत गुणे, ऐसे कुछ वो 8 बार का अनंत गुरुदेव बताते थे। 8 बार का अनंत वो अविभागी प्रतिच्छेदों तक जाता है। यहां पर ये कह रहे हैं ये जो आत्मा विलास करता है, विलास करता है, विलसित, इसका क्या शब्द शाब्दिक अर्थ क्या होगा?
आनंदमयी क्रीड़ा।
हाँ क्रीड़ा, विलास करना माने क्रीड़ा करना,
आनंद भोगते हुए।
वाह वाह वाह, तो ये आत्मा कहां विलास करता है, किसमें विलास करता है, इसको इसके पास में कौन सी सामग्री है जिस सामग्री में ये भोग भोगते हुए विलास करता है? अरे बोले उसके पास में अनंत गुणों की सामग्री है, और वो अपने अनंत गुणों के साथ में क्रीड़ा करते हुए, अनंत गुणों के साथ में भोग भोगते हुए, वो अनंत काल तक वो सिद्ध भगवान वहां खाली बैठे बैठे क्या करते होंगे? चुप। ये चुप क्यों करा दिया? सिद्ध भगवान का अभिनय होता है ऐसा बोलने से। तू क्या बोल रहा है, सिद्ध भगवान क्या करते होंगे, ये भाषा अच्छी है? अरे सिद्ध भगवान क्या करते होंगे तू जिज्ञासा कर, सिद्ध भगवान क्या करते होंगे ऐसा मत बोल। वो तो अपने अनंत गुणों में विलास करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, आनंद में मस्त रहते हैं। ये चिद विलास आत्मिका असंकुचित विकासत्व शक्ति है। बोले साहब उनको उनको थोड़ा सा कोई विकल्प नहीं आता होगा, कुछ विकल्प नहीं आता होगा कि मेरे गुण कम ना हो जाए, ज्यादा ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। उनको ये असंकुचित विकासत्व शक्ति ख्याल में रहती है। क्या? कि मेरे एक भी गुण में कोई कमी होगी नहीं, मेरे में कोई एक भी गुण कोई अलग से बढ़ने वाला नहीं है। असंकुचित विकासत्व शक्ति, मेरे में तो एक असंकुचित विकासत्व नाम की शक्ति है, और उस असंकुचित विकासत्व शक्ति के कारण से, देखो कितना अच्छा शब्द दिया है, क्षेत्र काल अनवच्छिन्न, माने कोई भी क्षेत्र हो और कोई भी काल हो। और ये सिद्ध भगवान के पास में नहीं है, ये वाली शक्ति चिद विलास आत्मिका, ये मेरे पास में है। मेरी आत्मा को तुम किसी भी काल में पहुंचा दो, मेरी आत्मा को तुम किसी भी क्षेत्र में पहुंचा दो, वो नित्य निरोध में चला जाए ना। नित्य निरोध में जाता नहीं है, नित्य निरोध में एक जीव एक बार वहां से आ गया ना, उसके बाद में वापस जाता नहीं है। तो नित्य निरोध में जाता नहीं, लेकिन अनंत काल तो रह के आया है। वहां पर भी उसके पास में असंकुचित विकासत्व शक्ति रही है। और वो आत्मा कैसे जिंदा रहा बताओ, मैं बोलता हूं निकोट में रहा अनंत काल, ये आत्मा की सत्ता कैसे नष्ट नहीं हो गई? बोले ये आत्मा इसलिए जिंदा रहा कि उसके पास में एक असंकुचित विकासत्व शक्ति थी। उसके एक भी शक्ति एक भी गुण में कोई कमी नहीं हो सकती थी, ऐसा विश्वास उसको नहीं था। निकोदिया को उसको विश्वास नहीं था, यदि उसको विश्वास हो जाता तो निगोद में सम्यक दर्शन हो जाता। उसको विश्वास नहीं था, लेकिन आत्मा ऐसे ही स्वरूप वाली उसके पास में रही है, अनंत काल तक रही है। नित्य निगोद में जितने काल रहा है उतने काल रही है। अभी देखो अपन अगली चर्चा करते हैं। इसके बाद में जो दूसरी शक्ति है वो है अकार्य कारणत्व शक्ति। बिल्कुल चेंज है, माने पिछली शक्ति से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये शक्ति कुछ अलग बता रही है। ये शक्ति कह रही है कि अकार्य कारणत्व शक्ति। देखो एक बात बताता हूं मैं आपको, आत्मा के गुणों की आत्मा की शक्तियों की यदि उसका प्रैक्टिकल रूप समझना हो, प्रैक्टिकल, ये तो शक्तियां हैं, इनको हम अव्यक्त भी कह सकते हैं, लेकिन गुरुदेव इसमें से व्यक्त निकालते थे क्या? शक्तियां है ना, गुण है, तो अव्यक्त हैं कि अव्यक्त हैं? हैं अव्यक्त, लेकिन गुरुदेव उसमें से भी व्यक्त निकालते थे। कहां से निकालते थे बताओ, उस दिन मैं भूल गया था आपको बताते हुए, कहां से निकालते थे गुरुदेव, कौन से शब्द से ये अर्थ निकालते थे गुरुदेव? इसका अर्थ निकालते थे उछलती हुई से, कि आत्मा में अनंत शक्तियां उछलती हैं, तो ये उछलती में से वो ये अर्थ निकालते थे कि वो व्यक्त हैं, अव्यक्त नहीं है आत्मा को, ऐसा गुरुदेव बहुत बोलते थे कि आत्मा अव्यक्त है कि अव्यक्त है। तो आत्मा अपने स्वरूप से तो त्रिकाल व्यक्त है, लेकिन पर्याय की अपेक्षा से उसको अव्यक्त कहा जाता है। पर्याय की अपेक्षा से उसको अव्यक्त, पर्याय जैसी व्यक्त है ऐसा आत्मा व्यक्त नहीं है, इसलिए अव्यक्त है। लेकिन अपने स्वरूप से देखें तो आत्मा त्रिकाल व्यक्त है। क्यों व्यक्त है बताओ, क्यों व्यक्त है? क्योंकि उस पर कोई आवरण नहीं है। अरे जिस पर आवरण हो उसकी व्यक्तता ढके, सूर्य में लगे ग्रहण, चंद्रमा में लगे ग्रहण, ये तो आत्मा ऐसा है कि ये आत्मा अपने स्वरूप से पर्याय की बात नहीं कर रहे, स्वरूप से कह रहे हैं कि वो त्रिकाल निरावरण शब्द है, त्रिकाल निरावरण, सकल निरावरण। वाह, तो ये जो है आत्मा क्यों ऐसा है, अब देखो इसमें ये चौदहवीं शक्ति पर अपन चल रहे हैं। ये शक्ति कह रही है कि आत्मा अकार्य कारणत्व शक्ति, आत्मा में एक शक्ति है अकार्य कारणत्व शक्ति। क्या मतलब इसका? बोले साहब वो किसी का कार्य नहीं है और वो किसी का कारण नहीं है, तुम हमको झंझट में मत डालो। क्या? क्या हम किसी के कारण नहीं और हम किसी के कार्य नहीं, ये दोनों को एक साथ कह दिया, अकार्य अकारण, अशब्द को कॉमन कर दिया, आदि दीपक बना दिया, इसलिए क्या बन गया? अकार्य कारण। अकार्य कारण नहीं, अकार्य और कारण नहीं है कि कार्य तो नहीं है किसी का लेकिन कारण है ना, शक्ति का रूप है ये। देखो बहुत अच्छा लिखा, अकार्य को कहने के लिए, अकार्य को समझाने के लिए इसमें शब्द डाला है अन्य अक्रियमाण, और अकारण को समझाने के लिए शब्द डाला है अन्य अकारक। ये अन्य के द्वारा अक्रियमाण है, आत्मा अन्य के द्वारा अक्रियमाण है, अन्य के द्वारा किया हुआ नहीं है, इसलिए अकार्य है। और अन्य अकारक, इसलिए अन्य का कोई कारक भी नहीं है, अन्य का वो कारण भी नहीं है, इसलिए क्या है आत्मा? अकारण है। जैसा है वैसा है, जहां है वहां है। हमको देखो साहब, आत्मा यदि किसी का कारण, किसी का कार्य हो, ये पराश्रितता आती है आत्मा में, किसी का कार्य हो तो उसकी राय जोहना पड़े, उसका थोड़ा सा मस्का लगाना पड़े, उसको थोड़ी सी भाव देना पड़े। हम किसी को भाव नहीं देते, क्यों नहीं भाव देते हो? क्यों नहीं भाव देते हो? हम अहमिंद्र हैं। अहमिंद्र क्या होते हैं बता, मालूम आपको अहमिंद्र क्या होते हैं? ये जो पहला स्वर्ग है, दूसरा स्वर्ग है, ऐसे 16 स्वर्ग है ना, इन 16 स्वर्गों में एक होता है इंद्र, और उसके अंडर में होते हैं असंख्यात देव। एक होता है इंद्र, और ऐसी और भी व्यवस्था है, एक इंद्र होता है, प्रति इंद्र होता है, और वो है ना इंद्र सामानिक, त्रायस, त्रिंस, लोकपाल वगैरह वगैरह 10 प्रकार के। लेकिन उसमें असंख्य देव होते हैं, वो सारे असंख्य देव जो हैं वो किसकी आज्ञा में चलते हैं? वो इंद्र महाराज की आज्ञा में चलते हैं। लेकिन ये 16 स्वर्गों के बाद में जो 9 ग्रेवयक हैं, 9 अनुदिश हैं, पंच उत्तर पंचोत्तर विमान हैं, वहां पर कौन रहते हैं? वहां कौन रहते हैं? बोले साहब वहां अहमिंद्र होते हैं। अच्छा, उनके अंडर में देव कितने होते हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। फिर क्या होते हैं वो? बोले हम, हम इंद्र। उनसे पूछो साहब आप कौन? बोले हम इंद्र हैं। बोले साहब आप कौन? बोले हम भी इंद्र हैं। बोले साहब आप कौन? बोले हम भी इंद्र हैं। सारे के सारे इंद्र हैं क्या? बोले हाँ, हम अहम इंद्र हैं। हम अहम इंद्र हैं। सब कह रहे हैं अहम इंद्र, अहम इंद्र, अहम इंद्र, अहम इंद्र, सब अहम इंद्र हैं। कोई उनके अंडर में नहीं और वो किसी के अंडर में नहीं, इसका नाम क्या है? अकार्य कारणत्व शक्ति। ये अकार्य कारणत्व शक्ति का, अच्छा तो ये जो अकार्य कारणत्व शक्ति है, ये किसी का कारण नहीं और ये किसी की कार्य नहीं, ठीक है? क्यों भाई साहब? अकार्य कारणत्व शक्ति जो है ना, आत्मा में जो अकार्य कारणत्व शक्ति है, वो किसी की कारण नहीं है, वो किसी का कार्य नहीं है, ठीक है? वाह, देखो ये अपना अर्थ लिखा है। ये अकेली शक्ति ऐसी नहीं है कि ये खुद किसी का कार्य नहीं है, किसी का कारण नहीं है। ये शक्ति कह रही है कि ये जो हमारा आत्मा है, अनंत शक्तियों का पुंज, ये आत्मा किसी का कार्य नहीं है, किसी का कारण नहीं है, ये आत्मा। अच्छा चलो भैया, ये शक्ति भी किसी का कार्य कारण नहीं है और ये आत्मा भी किसी का कार्य कारण नहीं है। बाकी के अनंत गुण वो तो है ना किसी के कार्य कारण। अरे वो जो है आत्मा, वो सब अनंत शक्तियों का पुंज है ना, तो यदि उसका एक गुण भी किसी दूसरे का कार्य कारण हो तो वो आत्मा पर भी उसका आरोप आएगा, और अभेद वृत्ति से और अभेद उपचार से। अरे एक गुण में भी यदि दोष है तो आत्मा में दूसरे, आत्मा अशुद्ध हो जाएगा, उसमें आरोप आ जाएगा आत्मा में। इसलिए ये जो है, ये शक्ति कह रही है इस शक्ति के कारण आत्मा, माने आत्मा के अनंत गुण, आत्मा की अनंत शक्तियां, आत्मा के अनंत स्वभाव, आत्मा के अनंत धर्म, आत्मा की अनंत पर्याय, कोई किसी का कार्य नहीं है, कोई किसी का कारण नहीं है। हमको क्या बोलते हैं ना, कोई गीत भी है, अच्छा हम ना किसी के कोई ना हमारा, झूठा है जग का व्यवहारा, हमको कोई कार्य नहीं है और हमारा कोई कारण नहीं है, हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं। ये स्वतंत्रता की घोषणा करने वाली गुरुदेव तो ये स्वतंत्रता के प्रकरण में अकार्य कारणत्व शक्ति का बहुत उल्लेख करते हैं बारंबार। आप 47 शक्तियों के व्याख्यान गुरुदेव के अकेले 47 शक्तियों के व्याख्यान के समय मत सुनो, गुरुदेव के एक एक व्याख्यान के समय आपको कब कौन सी शक्ति का व्याख्यान सुनने मिल जाए क्या पता, उजलती हुई दिख जाए। क्या बात है, अकार्य कारणत्व शक्ति ये किसी का ऐसा क्यों है, लेकिन क्यों है ऐसा? बोले ये जो अकार्य कारणत्व शक्ति है ना, ये एक द्रव्यात्मिका है, एक है, एक। आपको कल बताया था ना, एक में, एक में ना छोटा ना बड़ा ना दूसरा ना तीसरा, एक द्रव्यात्मिका। यदि दो दो कब होंगे, जब कोई कारण हो और कोई कार्य हो तो दो हो जाएंगे। ये जो है एक द्रव्य, एक है और द्रव्यात्मिका है। इसमें आप ये भी लगा सकते हो कि पर्यायों में, सुनना, पर्यायों में तो कथनचित कार्य कारण का व्यवहार होता है। क्या बोला, पर्यायों में अशुद्ध पर्याय है जैसे संसार अवस्था में, तो उसमें तो पर्यायों में कथनचित कार्य कारण का व्यवहार होता है, लेकिन ये जो असंकुचित विकासत्व शक्ति है ये एक द्रव्यात्मिका है। उसको मैं ऐसा कहना चाहता हूं, पर्यायों में भी जो ये कार्य कारण का व्यवहार होता है वो कुछ एक पर्याय है, कुछ एक जिनमें अशुद्धता आती है, जिन गुणों में। जो स्वभाव पर्याय होती हैं वो किसी का कार्य नहीं होती हैं, वो किसी का कारण नहीं होती हैं, स्वभाव पर्याय। तो देखो, एक कार्य कारण में जो निमित्त कार्य, निमित्त कारण का जो प्रसंग बनता है, निमित्त कारण का प्रसंग, आत्मा में दो पर्याय, दो प्रकार की पर्याय है। एक पर्याय तो है स्वभाव पर्याय और दूसरी है विभाव पर्याय। मैं एक विशेष प्रसंग में बता रहा हूं, वैसे तो पर्यायों के और बहुत सारे भेद हैं, गुण पर्याय, द्रव्य पर्याय, अर्थ पर्याय वगैरह वगैरह बहुत सारे भेद हैं। ये स्वभाव पर्याय और विभाव पर्याय का क्या अंतर है बताओ? स्वभाव पर्याय उसको कहते हैं जिसका कोई अन्य द्रव्य कारण नहीं होता है, निमित्त भी नहीं होता। उसके लिए शब्द है, शायद आलाप पद्धति में है कि कहां है, कि स्वनिमित्त का स्वभाव पर्याय। और विभाव पर्याय किसे कहते हैं? स्वपर निमित्त का विभाव पर्याय। विभाव पर्याय उसको कहते हैं जिसमें स्व और पर दो कारण हो, और स्वभाव पर्याय उसको कहते हैं जिसमें कोई अन्य द्रव्य कारण ना हो, उसका नाम है स्वभाव पर्याय। और इसके लिए कौन निमित्त है मालूम आपको? कौन निमित्त है इसके लिए? निमित्त माना है अग्रु लघु गुण, वो तो आत्मा का ही है, इसलिए अग्रु लघु निमित्त का है वो। स्वनिमित्त का माने अग्रु लघु निमित्त, अग्रु लघु गुण के कारण होता है, आएगा अभी अग्रु लघु गुण अपना। लेकिन इसमें अग्रु लघु गुण थोड़ा अलग टाइप का है लेकिन है, बहुत मजेदार है अग्रु लघु गुण। तो ये जो है एक द्रव्यात्मिका होने से, जो द्रव्य नाम की जो सत्ता है ना, द्रव्य नाम की सत्ता, पर्याय तो क्षणिक है, इसलिए उसमें आरोप आ जाता है कि ये किसी का कारण है, किसी का कार्य है। पूर्व पर्याय कारण बन जाती है, उत्तर पर्याय कार्य बन जाती है। लेकिन जो द्रव्य है वो अनादि निधन है, अनादि निधन होने से उसमें कार्य कारण का आरोप आता नहीं। किसी द्रव्य को किसी ने बनाया हो तो वो किसी का कार्य माना जाए, कोई द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य को पैदा करता हो तो वो उसका कारण माना जाए, लेकिन द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य को उत्पन्न नहीं करता है, ऐसी इसमें अकार्य कारणत्व की शक्ति है। इसके बाद की ये जो शक्ति है ये बहुत जोरदार है। 15वीं शक्ति है परिणम्य परिणामकत्व शक्ति। इसके चार बोल हैं। कौन से चार बोल हैं? देखो पढ़ना, परात्म निमित्तक, एक बोल के ज्ञानाकार, दूसरा बोल ग्रहण ग्राहण स्वभाव रूपा परिणम्य परिणामकत्व शक्ति। बहुत जोरदार है, इसमें मिक्सिंग बहुत है। परात्म निमित्तक गे ज्ञानाकार और ग्रहण ग्राहण स्वभाव रूपा, तीन बोल है तीन, और परिणाम परिणाम में परिणाम का तो शक्ति ये तो उसका नाम ही है। तीन बोल कौन से हैं? पहला है परात्म निमित्तक, दूसरा है गे ज्ञानाकार, तीसरा है ग्रहण ग्राहण स्वभाव रूपा। क्या है इसमें ये शक्ति को दो शक्तियों में मैं बांटना चाहता हूं, परिणाम में परिणाम तत्व शक्ति, दो नाम है ना इसमें, एक परिणाम में और एक परिणाम तत्व, एक परिणाम में शक्ति और एक परिणाम तत्व शक्ति है। मिक्सिंग करेंगे अपन, पहले अलग अलग तो समझ ले, अलग अलग यदि हम समझेंगे तो इसका रूप ऐसा बनेगा, देखो इसका रूप ऐसा बनेगा, जिस शक्ति के कारण आत्मा परात्म निमित्तक था ना, उसमें परात्म निमित्तक, उसके दो टुकड़े कर दो, दो भाग कर दो, पर निमित्तक और आत्म निमित्तक। फिर दूसरा बोल है गे ज्ञानाकार, इसके भी दो भाग कर दो, एक गेयाकार दूसरा ज्ञानाकार, तीसरा है ग्रहण ग्राहण स्वभाव रूपा, तो पहला कर दो ग्रहण स्वभाव रूपा, दूसरा करो ग्राहण स्वभाव रूपा, और परिणाम में परिणाम तत्व शक्ति के भी दो भाग कर दो, एक परिणाम में और एक परिणाम तत्व। अब इसके बोल बनाओ, दो बोल अलग अलग पहले बनाते हैं अपन, कैसे बन रहे हैं, जिस शक्ति के कारण आत्मा पर निमित्तक गेयाकारों को ग्रहण करने के स्वभाव रूप होने के कारण परिणाम्य होता है, ये परिणाम्य का अर्थ है। ये परिणाम्य और परिणाम कम में क्या अंतर है? परिणाम्य है कार्य और परिणामक है कर्ता। क्या? परिणाम्य है कार्य, कर्म कहो या कार्य कहो, और परिणामक, परिणामक माने परिणाम को करने वाला, परिणाम रूप होने वाला परिणाम्य और परिणाम को करने वाला परिणामक, ये इसकी व्याख्या। परिणाम्य किसे कह रहे हैं? परिणाम रूप होने योग्य, उसका नाम है परिणाम्य, और परिणाम को करने वाला, इसका नाम है परिणामक। ऐसा बहुत जगह एक क प्रत्यय जो है ना, ये कर्ता बने का सूचक होता है, एक क प्रत्यय जो लग जाता है ना, बहुत सी जगह आप उदाहरण मिल जाएगा क प्रत्यय के, जैसे ना भाव्य भावक, तो भाव्य कहते हैं होने योग्य, उसको कहते हैं भाव्य, और भावक भाव रूप होने योग्य भाव्य है, और भाव को करने वाला वो भावक है। ऐसा यहां पर परिणाम को परिणाम रूप होने योग्य परिणाम में है और परिणाम को करने वाला परिणामक है। बोले इन दोनों को अलग अलग कैसे किया जा सकता है? बोले नहीं करेंगे, इसलिए तो एक ही शक्ति बनाई है, परिणाम में परिणाम कब तो शक्ति। क्या होता है इसमें? देखो एक परिणाम में परिणाम तत्व में आत्मा का एक स्वभाव तो है ग्रहण करने का, दूसरा स्वभाव है ग्रहण में आने का, एक है ग्रहण करने वाला और एक है ग्रहण में आने वाला। तो ग्रहण करने वाला कौन है? ग्रहण करने वाला है ज्ञानाकार, और ग्रहण में आने वाला कौन है? वो है गे आकार। ये लिखा पीछे देखो, अच्छा, और जो गे आकार है वो किस निमित्तक है? वो किसके निमित्त से हुआ? बोले गे आकार पर के निमित्त से हुआ, और ज्ञानाकार किसके निमित्त से हुआ? बोले ज्ञानाकार आत्मा के निमित्त से हुआ। निमित्त यहां निमित्त शब्द उपादान के लिए भी है,
कारण के,
कारण के अर्थ। पर आत्म निमित्तक के ज्ञानाकार ग्रहण ग्राहण रूपा, ज्ञानाकार ग्रहण रूप है क्या? ग्रहण रूप, ग्रहण रूप, और ग्रहण रूप कौन है? ज्ञाकार, वो ग्रहण में आते हैं। आत्मा का जो ज्ञानाकार है उसमें ऐसी शक्ति है कि जब कोई गेय सामने आता है तो वो अपना सर्वस्व, जैसे वो शांताबेन ने, शांताबेन के बारे में चिंता चंपाबेन कहते थे, क्या कहते थे मालूम? बोले जैसा मैं इनको कहती हूँ इनका द्रव्य ऐसे ही परिणमित हो जाता है इनका द्रव्य ऐसे ही परिणमित हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर यह ज्ञानाकार कैसा है, जैसे ही कोई परद्रव्य का गेय आता है सामने तो यह ज्ञानाकार गेयाकार रूप परिणमित हो जाता है और अपने ज्ञानाकार को नहीं छोड़ता है अपने ज्ञानाकार को नहीं छोड़ता है। ऐसे ही इसमें आत्मा में एक परिणम परिणाम तत्व नाम की शक्ति है। इसकी चर्चा अपन और थोड़ी कल करेंगे, अभी समय हो गया, अपनी चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप बंद कर आइए सर।
Yeah.